अभी हमारे बीच उपस्थित है परम स्नेही राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बेन। बाबा के इस भट्टी के संगठन में उर्मिला बेन हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। खड़े होकर स्वागत करें, जोरदार तालियों से। कब से बैठे हैं? बैठ जाओ। आपको बाबा का ये ज्ञान 1981 में मिला, आपने अपना जीवन 1985 में समर्पित किया। वर्तमान समय आप ज्ञानामृत की सह संपादिका के रूप में और हरियाली त्रिमासिक को भी आप बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित करते हैं। आप बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, तो एक ब्रह्मा कुमारी और उनकी लेखनी भी वंडरफुल है। ऐसी आदरणीय उर्मिला बहन आज हम सबके बीच है। आपका विषय है स्व संबंध सेवा में निर्विघ्न एवं विघ्न विनाशक स्थिति। स्व संबंध सेवा में निर्विघ्न एवं विघ्न विनाशक स्थिति। परम आदरणीय उर्मिला बहन।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही सुंदर और प्रतिदिन के लिए उपयोगी विषय पर अभी हम चर्चा करेंगे। प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया और हमको अनुभव करवाया कि सतयुग और त्रेता में हम देवता थे। उसके बाद द्वापर युग में हमारी जड़ यादगारें मंदिरों में बनी और आज हम देखते हैं कि भक्त लोग हमारी जड़ यादगारों के सामने जाते हैं और क्या गाते हैं। यही गाते हैं कि आप विघ्न विनाशक हैं, विघ्न हरने वाले हैं, कष्ट मिटाने वाले हैं। शिव बाबा की महिमा में भी भक्त यही गाते हैं। तो जो बाप की महिमा सो बच्चों की महिमा। तो बाबा कहते हैं जब आप विघ्न विनाशक हो, विघ्न हरने वाले हो, तो भला आपके जीवन में विघ्न कैसे आ सकते हैं? फिर भी विघ्नों की दुनिया है, पराई दुनिया है, रावण राज्य है, उसमें हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो बातें तो आ जाती हैं, लेकिन वो बातें पानी पर लकीर की तरह आती और चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बातें आएंगी नहीं, लेकिन रुकावट नहीं डालेंगी। तो अभी हम ऐसे कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जिनका पालन करने से हम संपूर्ण निर्विघ्न बने रहेंगे। सबसे पहले तो बाबा कहते हैं कि विघ्न आते तब है जब बच्चे बाप को ना देख करके बातों को देखने लग जाते हैं। जहां बाप है वहां बात नहीं और जहां बात है वहां बाप नहीं। तो जब हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, हमारा लक्ष्य है बिंदु, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु और जो बीत गया वो भी बिंदु, उसको भी लगाना है बिंदु। यादगार शास्त्र महाभारत में दिखाते हैं कि अर्जुन की नजर बिंदु पर थी, ना तो उसने मछली को देखा ना मछली की आंख को देखा, आंख के भी बिंदु को देखा, वहां अपना निशाना लगाया और उसके बदले में क्या पाया? ध्रुव पद। द्रौपदी जो नाम लिखा है वास्तव में वो ध्रुव पद है, अटल अचल पद। तो अगर हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे तो अपने अचल पद को, अटल पद को पा सकेंगे। जो योगी होता है उसकी निशानी बताई जाती है, वो देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, बोलते हुए नहीं बोलता। शास्त्रों में लिखा है कि जो सच्चा योगी है वो अंधा, बहरा और गूंगा होता है। तो बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस अभी से डालो, क्योंकि अंतिम समय की परिस्थितियां बड़ी विकराल होंगी, और अगर ये अभ्यास अभी का नहीं होगा तो वो परिस्थितियां उलझा लेंगी। उन नेगेटिव परिस्थितियों को, जटिल परिस्थितियों को देख करके मन उलझेगा, और जो उलझेगा वो उजला कैसे बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस डालो कि देह है पर होते हुए भी नहीं है, अशरीरी है, लाइट रूप है, फरिश्ता रूप है। और फिर बाबा कहते हैं जो विस्तार की बातें हैं वो है वृक्ष और सार है बीज। तो बीज में कितनी ताकत होती है हम सब जानते हैं ना, बीजों से बहुत औषधियां बनती हैं, और बीज की जो गिरी है उसको भी बहुत एक माजून के रूप में यूज किया जाता है। तो मैं आत्मा बीज स्वरूप हूँ, जब हम ये संकल्प करते हैं तो सब शक्तियां सिमट करके अंदर समा जाती हैं, और मेरा बाबा सुप्रीम बीज है, मैं भी बीज वो भी बीज, और बीज के साथ जब बीज कनेक्ट हो जाता है तो सुप्रीम बीज की सारी शक्तियां आत्मा में आ जाती हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में विस्तार था, रामायण की कहानी विस्तार है, महाभारत की कहानी विस्तार है, छोटी सी बात को सुनाने के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई, तो उस विस्तार से किसी को फायदा थोड़े हुआ। अब वापस सार में टिक जाओ, क्योंकि सार में टिकेंगे, सार स्वरूप बनेंगे, तभी उच्च पद की प्राप्ति होगी। निर्विघ्न बनने के लिए अपनी दिनचर्या को सेट करना है। एक होती है दिनचर्या, एक होती है मनचर्या। दिनचर्या तो सबकी होती है, जितने भी इस सृष्टि पर जलचर, नभचर, स्थलचर, सुबह से लेकर रात तक अपने शरीर निर्वार्थ कुछ कुछ करते हैं। लेकिन जब हम शारीरिक काम करेंगे तो हमारे मन में क्या विचार होंगे, हम कौन से स्वमान में रहेंगे, उसको कहते हैं मनचर्या। सुबह उठेंगे तो किस स्वमान से उठेंगे, दुनिया के लोग तो उठते हैं कि मैं फलाना उठा, शरीर याद रहता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं आत्मा अवतरित तो हुई हूँ, मैं अवतरित आत्मा, तो ये हमारा स्वमान। दुनिया में लोग स्नान फ्रेश होते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये शरीर मंदिर है और मैं इसमें विराजमान मूर्ति, अपने मंदिर को स्वच्छ कर रही हूँ, मैं मूर्ति भी हूँ और ट्रस्टी भी हूँ। और मूर्ति भी कौन सी हूँ, जो बाप दादा को अति प्रिय हूँ। तो दिनचर्या के साथ मनचर्या, उसके बाद हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो मन में क्या संकल्प है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान का अति प्रिय विद्यार्थी हूँ, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। उसके बाद कर्म योग में पुनः क्या स्मृति रखते हैं, कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से मुक्त कर्म योगी, कर्म और धर्म का बैलेंस। तो जब दिनचर्या में मनचर्या साथ साथ चलती है, शक्तिशाली स्वमान और संकल्प मन में रहते हैं तो हम निर्विघ्न रहते हैं। बातें आती हैं और हमको नमस्कार करके लौट जाती हैं। फिर बाबा कहते हैं विघ्न आने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि चलते चलते कोई ना कोई पुराना संस्कार प्रकट होता है, और हम व्यर्थ संकल्पों के हैमर से, हैमर माना हथौड़ा, व्यर्थ संकल्पों के हैमर से उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, रुकावट को हटाने की कोशिश करते हैं। रुकावट हटती नहीं है तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। फिर जब दिल शिकस्त होते हैं तो कभी व्यक्ति की शिकायत करते हैं, कभी परिस्थिति की शिकायत करते हैं, कभी मन में सोचते हैं ये कब तक चलेगा, ये खत्म क्यों नहीं होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान भी मदद नहीं करता है। तो बाबा कहती हैं जब ऐसा कुछ हो तो व्यर्थ संकल्पों के हैमर से पत्थर तोड़ने की कोशिश मत कर, मजदूर मत बन। हथौड़ा कौन चलाता है? मजदूर चलाता है। आप तो बादशाह हो, बाबा कहती हैं दो ताजधारी बादशाह हो, बाबा के दिल तख्त नशीन हो, सारे विश्व पर राज्य करने वाले हो, तो भला आप पत्थर क्यों तोड़ेंगे? एक शब्द ड्रामा, ड्रामा शब्द को यूज करो और जंप दे करके उसको पार कर जाओ। ड्रामा शब्द को यूज करो और हाई जंप लगा करके पार कर जाओ। फिर बाबा कहती हैं आपके पास ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट्स बुद्धि में भी हैं, डायरी में भी है, लेकिन विघंजित कौन बनेगा जो समय पर उन पॉइंट्स को यूज करेगा। 69 की एक मुरली में बाबा ने कहा है कि तीव्र पुरुषार्थी वो है जिसे समय पर पॉइंट्स याद आ जाती हैं। जैसे बाबा कहते हैं कई डॉक्टर होते हैं उनको एकदम जबानी दवाइयां याद होती हैं, पेशेंट को लिख के देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है तो डॉक्टर की वाह वाही होती है। कई वकील होते हैं उन्हें भी पॉइंट्स जबानी याद होते हैं, समय पर यूज करते हैं तो केस को जीत जाते हैं। तो आप बच्चों को भी पॉइंट्स समय पर याद आनी चाहिए। इस परिस्थिति में मैं कौन सी ज्ञान की पॉइंट को यूज करूं जिससे मैं भी निर्विघ्न बनूं और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाऊं। और बाबा ये भी कहते हैं कि जब कोई भी विघ्न आता है, समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो उस समय क्या चाहिए? एक तो निर्भयता चाहिए, एक साहस चाहिए, एक सामना करने की शक्ति चाहिए। अगर ये तीन चीजें हमारे पास हैं, तो जो बात आई है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी, हम बड़े हो जाएंगे, हम ऊंचे हो जाएंगे, वो बात नीचे हो जाएगी। और जो व्यक्ति ऊंचा हो जाता है, जैसे कोई पहाड़ी पे खड़ा हो तो नीचे की चीज क्या लगती है? बड़े बड़े मकान भी माचिस की डिब्बी जैसे लगते हैं, बड़ा बड़ा कारखाना भी एक छोटा सा मॉडल नजर आता है। हवाई जहाज में बैठ के आप नीचे की दुनिया को देखो, आपको बड़े बड़े खेत भी एक छोटी सी क्यारी जैसे लगेंगे। तो जब हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है तो बात छोटी हो जाती है, लेकिन अगर हमारे अंदर भय आ गया, कमजोरी आ गई, तो हम छोटे हो जाएंगे, बात बड़ी हो जाएगी, बात हमको काबू में कर लेगी, हम पे नियंत्रण कर लेगी। और नहीं तो हम बड़े हो गए तो हम बात को नियंत्रित करेंगे। एक पौराणिक कथा बताते हैं कि एक बार श्री कृष्ण और बलराम किसी जंगल के रास्ते जा रहे थे, रात हो गई, आगे घना जंगल था। तो बलराम ने कहा अपन यही विश्राम करते हैं, सुबह चलेंगे, लेकिन दोनों एक साथ विश्राम नहीं करेंगे, पहले मैं पहरा देता हूँ, आप आराम करो। श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है। बलराम जी पहरा देने लगे तो इतनी देर में एक राक्षस आया और वो जोर से चिल्लाया। जब वो जोर से चिल्लाया तो बलराम डर गया, और जब डरा तो एक घटना घटी, बलराम का आकार छोटा हो गया और राक्षस का आकार बहुत बड़ा हो गया। अब जब राक्षस ने देखा ये डर गया तो और जोर से चिल्लाया। अब जब और जोर से चिल्लाया तो बलराम और ज्यादा डर गया और उसका आकार और ज्यादा छोटा हो गया, राक्षस और विशालकाय हो गया। और जब वो तीसरी बार चिल्लाया तो बलराम इतना डरा कि वो मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके मुख से चीख निकली कृष्ण जी। अब कृष्ण जी अपना नाम सुन करके उठ गए। उठे तो उन्होंने देखा कि ये थक गया होगा, थक के सो गया होगा, और इसने मुझे आवाज लगाई होगी कि अब तुम पहरा दो, ठीक है मैं पहरा देता हूँ। अब इतने में राक्षस फिर आया। अब राक्षस जब चिल्लाया तो श्री कृष्ण जी डरे नहीं, बड़े साहस के साथ उन्होंने कहा तुम कौन, तुमको क्या चाहिए? और जब उन्होंने साहस से पूछा तो एक विचित्र घटना घटी, राक्षस छोटा हो गया, श्री कृष्ण जी का आकार बड़ा हो गया। राक्षस ने पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति देखा था जो डरा नहीं। वो फिर चिल्लाया और चिल्लाया तो कृष्ण जी डरे नहीं। कृष्ण जी ने फिर पूछा, तुमको चाहिए क्या, तुम बताते क्यों नहीं हो? तो इस बार राक्षस और छोटा हो गया, कृष्ण जी और बड़े हो गए। और जब वो तीसरी बार चिल्लाया और कृष्ण जी ने फिर सामने एकदम निर्भयता से बोला कि आखिर तुमको चाहिए क्या, तो उसका आकार बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण जी ने उसको उठाया, हथेली पे रखा, फिर अपनी धोती के पल्ले से बांध लिया, बड़े आराम से पहरा दिया। सुबह हुई, दोनों चल पड़े। तो बलराम कहते हैं, पता रात को क्या हुआ, एक बहुत बड़ा राक्षस आया था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, ठहरो, और अपने धोती के पल्ले से वो राक्षस को निकाल के दिखाया। बोला, इसकी बात कर रहे? बोला, हाँ, ये तो बहुत बड़ा था, इतना छोटा कैसे हो गया? तो कहा, देखो, तुम डर गए तो राक्षस बड़ा हो गया, और मैं डरा नहीं तो राक्षस छोटा हो गया। तो ये वास्तव में तो कथा हम सबको सिखाने के लिए बनाई गई है कि जब आप किसी भी बात से डर जाओगे, संकल्प चलाओगे, नेगेटिव सोचोगे, क्या होगा क्या होगा, ऐसे करोगे तो आपकी शक्ति कम होती जाएगी और सामने जो बात है उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। वो आपको ओवर पावर कर लेगी, आपको काबू में कर लेगी, आपको अधीन कर लेगी। लेकिन जब आप शक्तिशाली रहेंगे, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी तूफान, जब आप इस स्मृति में टिके रहेंगे तो बात छोटी हो जाएगी, छोटी होते होते एकदम खत्म हो जाएगी। तो कभी भी अपना साहस नहीं छोड़ो, सामना करने की शक्ति को साथ रखो, निर्भयता को साथ रखो। जब कोई भी विघ्न आता है तो बाबा कहते हैं, बच्चे बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओगे तो बच्चे रहोगे। बच्चा माना इनोसेंट, बच्चा माना एकदम स्वच्छ चित्त, बच्चा माना निश्चिंत, बच्चा माना निरंकारी। बच्चा निरंकारी होता है इसलिए कोई भी बात आती है तो सच सच माता पिता को बता देता है, कोई भारी चीज होती है तो क्या करता है, माताजी आप ले लो, मेरे से तो उठती नहीं है, पिताजी आप ले लो। तो जो अंदर होता है वो बाहर प्रकट कर देता है। इसकी भेंट में अगर हम कुटिल हैं, अगर हम अहंकारी हैं, अगर हम बाहर कुछ हैं और भीतर कुछ हैं, तो परिणाम क्या निकलता है, बाहर से दिखावा करेंगे कि नहीं जी हमारी अवस्था बहुत अच्छी, हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं जी, हमें कोई विघ्न नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर विघ्न खाते रहेंगे, नेगेटिव थॉट चलता रहेगा, अंदर ही अंदर समस्याओं का चिंतन चलता रहेगा। तो क्या करना है, अंदर बाहर एक, अर्थात बच्चे बन जाना है। और जब हम बच्चे बन जाते हैं तो हमारा कनेक्शन सीधा जुटता है, और जब हम सीधे पिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, और जब आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, आंतरिक बल बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, तो फिर कोई भी बात हमको मुश्किल लगती ही नहीं, क्योंकि जहां शक्ति है वहां सब बातें सरल हो जाती हैं, और जहां कमजोरी है वहां छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अंदर बाहर एक बनो, पारदर्शी बनो। और इसी को बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, कहना करना और सोचना, तीनों को एक समान बनाओ। मन में जो सोचा वही बोला और वो करके दिखा दिया। मान लीजिए हम बोलते बहुत ज्यादा है, मुझे ये करना है, या मैंने ये किया, या मैं ये करूंगा, और वो बात साकार में नहीं आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी खेत बोया ही नहीं और लोगों को गन्ने खाने का निमंत्रण दे दिया, काम अभी किया ही नहीं और उसका प्रचार कर दिया। पहले करो उसके बाद कहो, जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन की एक बात सुनाते हैं कि उसका एक शिष्य था, बहुत वाचाल था, बोलता बहुत था, अपनी महिमा बहुत करता था। जहाँ कहीं भी जाता था तो लोगों को सुनाता था कि मैं सुबह 2 बजे उठता हूँ और मैं 108 मालाएं फिराता हूँ, ऐसे ऐसे करके अपनी बहुत बड़ाई करता था। तो महात्मा बुद्ध को समाचार मिला तो महात्मा बुद्ध को बहुत दया आई। बाबा कहते हैं ना, बच्चे जब कुछ गलती करता है कोई तो आप उसे घृणा मत करो, क्रोध मत करो, लेकिन आप उस पर दया करो। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही वाचालता में रहेगा तो इसकी साधना क्या होगी, इसका तो भविष्य संवरेगा नहीं, तो मुझे इसको कुछ सिखाना चाहिए। तो एक दिन वो एक यात्रा पर उस शिष्य को साथ ले गए और देखा, पैदल ही जाते थे पहले, तो सामने से बहुत सारी गवें आ रही थी। पुराने जमाने में पशुधन बहुत बड़ा धन माना जाता था, एक एक व्यक्ति के पास 400-500 ऐसे गवें भी होती थी। तो गवों का झुंड आ रहा था तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा कि जरा गिनती तो करो ये गवें कितनी है। तो गिनती करने में वो बहुत होशियार था, उसने गिनती की, बोला जी गवें 425। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्या गिनती करने मात्र से गवें हमारी हो गई? कहता है नहीं बनते। तो बोला गवें अपनी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोला देखो, इतनी गवों को रखने के लिए पहले तो हमारे पास इतना पैसा हो जो अपन इनको खरीदें, फिर अपने पास इतनी बड़ी गौशाला हो जिसमें अपन इनको बांधें, फिर इतना चारा हो, इतना पानी हो, फिर इतने लोग हो जो इनकी सेवा करें, गौशाला की झाड़ू सफाई करें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि जैसे केवल गिनती करने से गवें हमारी नहीं हो जाती, उसी प्रकार केवल गिनती कर करके बताने से मंत्र हमारे नहीं हो जाते, साधना हमारी नहीं हो जाती। तुम गिनती कर करके बताते हो कि मैंने 108 मालाएं फिराई, मैं इतने बजे उठा, ये सब करना पड़ता है और पहले करना पड़ता है और उसके बाद बताना पड़ता है। करने से पहले अगर तुम बताते हो तो ये ऐसे ही है कि तुमने खेत बोया ही नहीं और लोगों को फल सब्जी का निमंत्रण दे दिया। तो शिष्य को ये बात समझ में आई। हम बच्चों को भी ये देखना है कि कई बार कई बातें ऐसी होती हैं, उमंग उत्साह में आकर के हम उनका प्रचार बहुत कर देते हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसी हमारी योजना है, लेकिन किसी कारण से वो कार्य नहीं हो पाता, फिर हमें ख्याल चलता, अरे हमने सबको बता दिया, हुआ नहीं, अब क्या होगा। तो पहले ही अपन अंकुश रखते, उमंग उत्साह तो अच्छी चीज है, लेकिन उमंग उत्साह में हम वो ना बोल जाएं जो बोलने योग्य नहीं है, उतना ही बोले जितने की जरूरत। हाँ, करने के बाद हम सबको बता दें, क्योंकि करने के बाद तो हमारे पास प्रूफ आ जाता है कि देखो भाई ये हमने काम कर लिया, लेकिन जब प्रूफ हाथ में नहीं है और उससे पहले अगर हम बोलते हैं तो वाणी ऑथेंटिक नहीं होती, उस वाणी में दम नहीं होता, शक्ति नहीं होती और दूसरों पे प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो निर्विघ्न बनने के लिए क्या करना है? पहले करनी, उसके बाद कथनी। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे एक मंत्र हमेशा याद रखो। वो मंत्र कौन सा है? अब घर जाना है, अर्थात उपराम अवस्था, अनासक्त स्थिति। और घर जाना है तो कैसे जाना है? जैसा घर है वैसा ही बन के जाना है। घर कैसा है? घर तो निर्वाण है, वाणी नहीं है, देह नहीं है, संबंध नहीं है, स्मृति नहीं है, विकृति नहीं है। तो भीतर के नेत्र से हम उस घर को देखते हैं और फिर अपनी अवस्था का मिलान करते हैं कि क्या हमारी वैसी अवस्था हो गई। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था, जैसे आए थे वैसे ही जाना। आए कैसे थे, परम धाम से उतरे कैसे थे, जब हमने पहला जन्म लिया हम कैसे थे, जब हम बाप की समीपता से नीचे उतरे तो हम कैसे थे। बाप के समीप थे तो बिल्कुल बाप समान थे, बाप के गुण हमारे गुण। तो जब हम परम धाम से आए तो हमारी दौलत क्या थी, हम आत्मा के मूल गुण और बाप समान गुणों को लेकर के नीचे उतरे थे, वही हमारी दौलत थी। जैसे हम अपने बच्चे को परदेश में भेजते हैं तो हम कहते हैं भाई ये चीजें लेके जाओ, तुमको आगे काम आएंगी। तो भगवान ने भी कहा बच्चे तुम नीचे परदेश में जा रहे हो, मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो अपने सब गुण अपनी सब शक्तियां अपने साथ लेकर के जाओ। तो जब हम नीचे उतरे तो हम फूल थे, गुणों में भी फूल, शक्तियों में भी फूल, ज्ञान में भी फूल। ज्ञान मतलब ज्ञान से जो प्राप्तियां हुई उनमें फूल। और फिर हम नीचे धरती पे आए, उसके बाद प्रकृति ने हमको ये देह दी, प्रकृति ने हमको कुछ पदार्थ दिए और उनसे हमने रोल प्ले किया। लेकिन अब वापस जाने का समय आ गया, घर बुला रहा है, तो जाना कैसे। व्यक्ति कहीं जाता है तो तैयारी के साथ जाता है। हमारी तैयारी क्या है, बाकी लोग तैयारी करते हैं कि दूसरे शहर में जाना है तो कुछ लेकर के जाए, हमारी तैयारी है कि जो इस दुनिया से हमने लिया वो यहीं छोड़ करके जाए, यहाँ की कोई भी चीज हमारे साथ ना चली जाए। ऐसे स्थूल चीजें तो छूट जाएंगी लेकिन उन स्थूल चीजों की स्मृति, आसक्ति, उनमें मेरापन, वो हमारे साथ ना जाए। मेरा कुछ नहीं था यहाँ, मैं मेहमान की तरह यहाँ रहा और मेहमान की तरह ही वापस लौट रहा।
शिव पिता को आ
तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ हमारे पास जो भी कुछ है उसको हम कहते हैं रंगमंचीय प्रॉपर्टी। ये रंगमंचीय प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कोई ड्रामा होता है और ड्रामा में मान लीजिए राम सीता का ड्रामा हो रहा है और कोई राम बन गया कोई सीता बन गई, तो क्या करेंगे? उन्हें हम सोने का मुकुट पहनाएंगे, सोने जैसे एक सिंहासन पे बिठाएंगे, उनके आसपास जो भी साधन होंगे वो राजाई रॉयल्टी वाले होंगे, बहुत महंगे बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन कितनी देर? अगर ड्रामा 2 घंटा चलेगा तो उनके पास वो चीजें 2 घंटा रहेंगी, 4 घंटा चलेगा तो 4 घंटा रहेंगी। उसके बाद जैसे ही वो रंगमंच से नीचे आएंगे वो सारी की सारी चीजें रंगमंच पे ही छूट जाएंगी, क्योंकि वो रंगमंच ये प्रॉपर्टी है, वो एक्टर की अपनी प्रॉपर्टी नहीं। जब तक एक्टर रंगमंच पे है तब उस सिंहासन पे बैठेगा, उस मुकुट को लगाएगा, लेकिन रंगमंच पर रोल पूरा होने के बाद न सिंहासन उसका है न मुकुट उसका है। अगर वो गरीब घर का बच्चा है तो अपनी वही शर्ट पहन करके अपने घर जाएगा, तो इसको कहते हैं रंगमंच ये प्रॉपर्टी। ये सृष्टि रंगमंच है, इस रंगमंच पर हम अपने घर से आए, कुछ भी नहीं लेके आए, भौतिक चीजें नहीं लेके आए, गुण तो लेके आए। यहाँ आने के बाद हमें जो भी भौतिक संपदा मिली, कम मिली या अधिक मिली, वो भौतिक संपदा क्या है? वो रंगमंचीय प्रॉपर्टी। जब तक रंगमंच पर हैं तब तक उसको यूज करेंगे, शरीर है शरीर के पदार्थ हैं, और जैसे ही रंगमंच से उतरे अब वो हमारी नहीं रहेंगी, न देह है न देह के पदार्थ। तो जो चीज रंगमंच तक है वो हमारी तो नहीं है ना, वो तो रोल प्ले करने के लिए है ना। लेकिन अगर हम रंगमंच पे रहते रहते यही सोचने लगे कि मुकुट भी मेरा और ये सिंहासन भी मेरा और ये सदा ही मेरा रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे? इसे तो भूल कहेंगे। तो रंगमंच पे रहते रहते हमको ये पाठ पक्का करना है कि यहाँ की जो भी चीजें हैं वो मेरी नहीं है, गुण मेरे हैं वो मेरे साथ जाएंगे, शक्तियां मेरी, तो मुझे गुण कलेक्ट करने हैं शक्तियां कलेक्ट करनी है, लेकिन मुझे चीजों में आसक्ति कलेक्ट नहीं करनी है। इस भाव से जब हम रंगमंच पे रोल प्ले करते हैं तो निर्विघ्न रहते हैं, न्यारे भी रहते हैं प्यारे भी रहते हैं, साक्षी भी रहते हैं उपराम भी रहते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, एक बार ट्रेन में मैं सफर कर रही थी, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि भाई दो बातें मत भूलो, एक भगवान को मत भूलो और एक अपनी अंतिम घड़ी को मत भूलो, अर्थात मुझे घर जाना है मुझे वापस लौटना है या ये देह छूटना है, ये बात मत भूलो। तो वो चीज अनुभव में आई, बहुत भीड़ थी तो एक महिला सीट पे बैठी थी और दूसरी महिला एक ग्रुप के साथ चढ़ी, जो ग्रुप के साथ चढ़ी उसका जो पिताजी था वो उस ट्रेन का गार्ड था, तो थोड़ा सा नशा था उसको, उसने पहले से बैठी महिला को कहा कि तुम उठो, मैं इस सीट पे बैठूंगी। पहले वाली महिला ने कहा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, खड़ी खड़ी थक गई हूँ, मुश्किल से सीट मिली है, मैं थोड़ा सा मुझे बैठने दो। इसी बात पे दोनों में बहुत कहासुनी हो गई। मैं भी थी उसी ट्रेन में, भीड़ में मैं भी एक कोने में बैठी थी, बहुत पुरानी बात है। तो जब बहुत कहासुनी हो गई तो मैंने मन में सोचा कि भाई मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं उस ज्ञान को कहाँ यूज करूंगी, मुझे यहाँ ज्ञान यूज करना चाहिए। तो मैं उन दोनों के बीच में खड़ी हो गई, थोड़ी मार पिटाई होने की आसार मुझे नजर आए। बीच में खड़ी हो गई, मैंने एक का हाथ इधर से पकड़ा, एक का हाथ इधर से पकड़ा और मैंने बोला ठीक है आपको लड़ाई करनी है तो आप लड़ लेना, लेकिन पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो जब मैंने कहानी का नाम लिया तो बाकी बहुत महिलाएं बैठी थी, उन्होंने कहा बहन जी कहानी सुनाओ, बहन जी कहानी सुनाओ। और वो भी थोड़ी चुप हो गई, खड़ी तो रही, मैं भी उनके बीच में खड़ी रही पर वो चुप हो गई। तो मैंने उनको कहानी सुनाना शुरू किया कि 15 दिन पहले यही ट्रेन और इसी पटरी पर चल रही थी, पर अचानक क्या हुआ कि जो शंटिंग थी वो लूज थी। डब्बे के साथ डब्बा एक हुक से जुड़ा होता है, उसको शंटिंग बोलते, और अगर वो लूज होती है तो लूज वाला डब्बा पीछे छूट जाता है, ट्रेन से अलग हो जाता है। तो इसी डब्बे की शंटिंग लूज थी, वो महिला डब्बा था, वो गार्ड के डब्बे के पास ही होता है, और वो अलग हो गया था और वो ऐसे चक्री खाते खाते और पटरी से काफी दूर गिरा था और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी। तो मैंने कहा ठीक है आपको लड़ना है आप लड़ लेना, एक बार ये देख लो कि इस डब्बे की शंटिंग ठीक हुई है कि नहीं है, एक बार झांक के देख लो। मैंने इतना ही बोला था और फिर वो दोनों चुप होके बैठ गई और पूरे डब्बे में सन्नाटा छा गया। और एक बहन ने कहा अल्लाह को याद करो, वो मुस्लिम बहन थी। दूसरी बहन हिंदू थी, उसने कहा हनुमान जी को याद करो। तीसरी बहन ने एक बिस्किट का पैकेट निकाला, बोला बच्चों में बांट दो। चौथी बहन ने एक पानी की बोतल निकाली, बोला किसी को पानी पीना है तो पी लो, मेरे पास बहुत पानी है। और मेरे को भी कहा बहन जी बैठ जाओ, यहाँ पे बहुत सारी जगह है। मुझे भी उन्होंने प्यार से बिठा लिया और मुझे कहा कि अभी तो लंबा सफर है, आप ज्ञान की और बातें सुनाओ। तो एक मिनट पहले कैसा माहौल था और एक ही मिनट में माहौल बदल गया। क्या बात याद आ गई? ये याद आ गया कि जीवन बहुत छोटा है और दुर्घटना कभी भी घट सकती है। इसलिए जब कोई यात्रा पर जाता है तो कहते हैं शुभ यात्रा, भगवान इसकी यात्रा सफल करना। तो ये जीवन यात्रा भी शुभ कैसी हो? ये तभी शुभ हो जब हमें ये याद रहे कि बस अब हम लौटने ही वाले हैं, बस अब गए की गए, अब हमारा लंगर उठ चुका है, अब हमको अपना घर दिखाई दे रहा है, हमने बहुत लंबे समय खेल लिया, रंगमंच पे बहुत रोल प्ले कर लिए, अब हमको लौटना है। तो ये लौटने की स्मृति सारी विघ्नों से हमें बचा लेती है, क्योंकि लौटने की स्मृति से मैंपन खत्म हो जाता है, ईगो खत्म हो जाता है, मेरा खत्म हो जाता है। तो ये लौटने की स्मृति हमेशा बनी रहे, हम हमेशा हमारी दीदी का मंत्र याद रखें। बड़ी दीदी का मंत्र था ना, अब घर जाना है, हम भी अपने जीवन का ये मंत्र बना लें, अब घर जाना है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे साक्षी और साथी, ये मंत्र भी याद रखो, दुनिया को साक्षी होके देखो और बाप के साथी बन के रहो। बाप के तो हम राइट हैंड है ना, कई बार हम उल्टा कर देते हैं, दुनिया को साथी बना लेते हैं, भगवान को साक्षी होके देखते हैं। और जब उल्टा कर देते हैं तो हमारी स्थिति भी उल्टी हो जाती है। दुनिया को साक्षी होके देखने का मतलब क्या है? जैसे अपन कोई नाटक देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, उसमें कुछ भी होता है, बेशक दुर्घटना हो रही होती है, बेशक किसी को कोई चोट लगती है, बेशक कोई अपशब्द बोलता है, लेकिन अपने को दुख नहीं होता, उस समय अपन साक्षी होते हैं। अपने को पता है ये तो आर्टिफिशियल है, ये तो नाटक है, ये तो ड्रामा है, और अगर इसी घटना में हम उलझ गए तो फिर आगे वाली घटना को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? तो अपन लेट गो करते जाते हैं और देखते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे आप उस ड्रामा को साक्षी होके देखते हो, दुनिया के खेल को भी साक्षी होके देखो। ये कल्प कल्प रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं। और इसमें आपको अपने विचारों को इन्वॉल्व नहीं करना है। जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं, बिंदु लगाते जाओ। जैसे नदी में पानी बह रहा है, कुछ पानी आगे चला गया, अपने सामने तो थोड़ा ही पानी आता है, कुछ पानी पीछे, तो समय की धारा बहती जा रही है। कुछ घटनाएं बह करके आगे चली गई, एक घटना मेरे सामने है, कुछ घटनाएं अब सामने आने वाली है, ठहराव तो कहीं भी नहीं। इसलिए इसको कहते हैं संसार, सरती इति संसार, जगत जो निरंतर गतिशील है। घटनाएं ठहरती नहीं है, लेकिन हम उनको पकड़ लेते। घटनाएं तो रील में लिपट रही हैं, लेकिन हम रील को खोल करके उस लिपटी हुई घटना को फिर निकालते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं। तो दादी गुलजार हंसी हंसी में सुनाया करती थी कि बताओ ज्यादा समझदार कौन, बात ज्यादा समझदार है या हम ज्यादा समझदार हैं? बात तो लिपट रही है, लेकिन हम उसको वापस खींच करके ले आते हैं। कौन ज्यादा समझदार हुआ? बात हमें पकड़ने नहीं आती है, लेकिन हम बात को पकड़ लेते हैं। तो ज्यादा समझदार कौन हुआ? बात ज्यादा समझदार हुई जो अपनी गति से अपने गंतव्य की ओर जा रही है, और हम क्या करते हैं, उसकी गति में अवरोध पैदा करते हैं और अपनी गति में भी अवरोध पैदा करते हैं। तो ये है साक्षी होके देखना और बाप को साथी बनाना, सर्व संबंधों से साथी बनाना। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि लक की, भाग्य की जो संपदा है, भाग्य का जो खजाना है, उसको खोलने की चाबी है मेरा बाबा। लेकिन चाबी के नीचे एक रिंग भी होता है ना, ताकि चाबी खोए ना। तो वो रिंग कौन सा है? वो रिंग है सर्व संबंधों से मेरा बाबा। सर्व संबंध, माता के संबंध की अनुभूति, पिता के संबंध की अनुभूति। वैसे तो मुख्य सात संबंध माने जाते हैं, लेकिन थोड़ा और संबंधों में आगे बढ़ो तो 108 संबंध माने जाते हैं, और उसके आगे तो संबंधों का और बड़ा विस्तार है, वो थोड़े दूर के संबंध होते हैं। तो मुख्य जो संबंध है हमारे, जैसे हम कहते हैं माँ, तो जब हम माँ के रूप में बाबा को याद करते हैं तो हमें शांति मिलती है। आपने देखा ना, बच्चा बाहर से थक करके आता है, पढ़ करके थक करके आता है, या दुनिया की धूप में, दुनिया की कड़वी परिस्थितियों में थक करके आता है, और माँ की गोद में आते ही सब कुछ भूल जाता है। तो हमारी प्यारी शिव माँ, उसकी गोद इतनी विशाल है, उसमें आते ही शांति मिल जाती है। पिता, पिताजी हमें विल पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, मनोबल मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चा बाप की उंगली पकड़ के चलता है तो क्या सोचता है, दुनिया में मेरे से बड़ा कोई आई नहीं, क्योंकि बाप की उंगली मैंने पकड़ रखी है या बाप ने मेरी उंगली पकड़ रखी है। निर्भय हो जाता है। जिस गली में वो डर के जाता था, बाप का साथ मिलते ही कितना निर्भय होके गाता, हंसता, उछलता हुआ जाता है। तो भगवान की उंगली मैंने पकड़ी और मेरी उंगली मैंने उसको पकड़ाई, तो विल पावर आ गई, भय खत्म हो गया, साहस आ गया। और जब हम उसको टीचर के रूप में याद करते हैं तो ज्ञान की अथॉरिटी बन जाती है। सतगुरु के रूप में याद करते हैं तो पवित्रता का बल आ जाता है, मन वचन कर्म की संपूर्ण पवित्रता। जब हम उसे भाई के रूप में याद करते हैं तो निश्चल प्रेम, जैसे राम और भरत का प्रेम दिखाते, निस्वार्थ प्रेम। जीवन में ईश्वरीय प्रेम की गंगा बहने लगती है और जब हम उसको जीवन साथी के रूप में याद करते हैं तो खुशी आती है, सुख आता है। सखा बनाते हैं, भगवान मेरा सखा है, गोप गोपियों का सखा था। सखा रूप में भगवान कहता है मैं बैठा हूं तू चिंता क्यों करता है, तो जीवन आनंदमय हो जाता है, आनंद से भरपूर हो जाता है। और जब हम उसको बच्चे के रूप में याद करते हैं, इतना महान मेरा बच्चा, तो जीवन में शक्ति आ जाती है। तो बाप को साथी बनाना माना सर्व संबंधों से साथी बनाना। अगर एक संबंध में भी उसको अपना नहीं बनाया तो उसकी याद आएगी और वो हमारा वीक पॉइंट हो जाएगा और वहां से माया प्रवेश हो जाएगी, उस संबंध में अटैचमेंट रह जाएगी। अब ये तो मुख्य संबंध है, लेकिन इसके आगे पोतरा धोतरा, पोत्री धोत्री और आगे भी बहुत संबंध। उन संबंधों में भी हमें बाबा को अपना बनाना है। कोई एक छोटा सा भी संबंध नहीं तो धोखा दे जाएगा। बताती हैं कि एक बार एक रामदास नाम का लड़का था और वो एक गुरु के पास साधना सीखने गया था, तो बहुत अच्छा लेकिन साधना में मन नहीं लगा, तो चुपके से एक दिन आश्रम छोड़ के वापस अपने गांव में आ गया। माँ बाप थे नहीं, एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया। तो गांव के एक सरपंच को बकरी दान देनी थी, किसी ने कहा अरे वो अपना रामदास गुरु के यहाँ से नाम दान लेके आया, बकरी उसी को दान में दे दो। तो उसको एक बकरी मिल गई, अब अकेला था, बकरी मिल गई, बकरी का नाम उसने रखा साथी। तो जब भी बुलाता है तो कहता है साथी आ जाओ खाओ, साथी आओ मेरे साथ चलो। बकरी भी साथी नाम सुन के दौड़ के उसके पास आ जाती थी, तो बकरी को उसने साथी बना लिया। एक दिन उसकी बकरी खो गई, बहुत परेशान हुआ, साथी साथी कहाँ गए कहाँ गए, चिल्लाता हुआ इधर से उधर दौड़ रहा था। किसी ने कहा कि अरे वो तो खेतों की तरफ गई थी, लाल रंग की बकरी हमने देखी, तो वो खेतों की तरफ दौड़ गया। इतने में वही महात्मा सामने से आ गया जिससे उसने थोड़ी साधना सीखी थी। तो उसने कहा अरे भाई तुम किसको साथी साथी कह के बुला रहे हो? तो उसने कहा महात्मा जी बकरी मेरी साथी। तो महात्मा जी हंस पड़े, बोला अरे तुमने राम नाम तो रखा रामदास और तुम बन गए बकरी दास। अब आप देखिए, मनुष्य भी अपने जीवन में कभी मकान दास, कभी वस्त्र दास, कभी जेवर दास, कभी संबंध दास और कभी गाड़ी दास, मोटर दास। जैसे वो बकरी दास बना, ऐसे हम भी दास बन जाते। कब बन जाते हैं? जब साथी से किनारा हो जाता है, सच्चे साथी को भूल करके दुनिया की किसी ना किसी वस्तु व्यक्ति वैभव को साथी बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सच्चे साथी को कभी नहीं भूलो, नहीं तो बाकी जितने भी साथी मिलेंगे वो आपको गुलामी बनाएंगे। एक बाबा ही है जो साथी बनके आपको बादशाह बना देता है। फिर कई बच्चे कहते हैं बाबा विघ्न आते ही क्यों है? बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया ही विघ्नों की है। ठंडी के मौसम में ठंड नहीं आएगी तो क्या आएगा? गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं आएगी तो क्या आएगा? लेकिन विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। जब विघ्न अपना काम नहीं छोड़ते तो आप अपना काम क्यों छोड़ते हो? तो विघ्न आएंगे, लेकिन आपको प्रणाम करके नमस्कार करके आपकी महिमा करके लौट जाएंगे, आएंगे जरूर, क्योंकि अभी उनका राज है। फिर कई बच्चे कहते हैं बाबा मित्र संबंधी हमारे सहयोगी क्यों नहीं बनते? बाबा कहते हैं बच्चे हर एक का अपना अपना पार्ट है। आप खेत में बीज डालते हो, सारे बीज एक साथ तो नहीं उगते हैं, कोई अगले दिन, कोई दो दिन बाद, कोई दस दिन बाद, कोई कोई बीज ऐसा भी होता है अगले सीजन में ही उगता है, तब तक जमीन में ही पड़ा रहता है। आपका काम क्या है? उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना करते ही रहना, थकना नहीं कि मैंने इतनी शुभ कामना की, ये ज्ञान में ही नहीं आया। तो भाग्य से ज्ञान मिलता है, सबको ज्ञान मिल जाए तो सभी सतयुग में आ जाएंगे। अब जिसके भाग्य में है, जो कल पहले आया होगा वो आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं आपको शुभ भावना, शुभ कामना हरेक के प्रति रखनी, क्योंकि आपको अपना पुण्य का खाता जमा करना है। फिर कई बच्चे कहते हैं बाबा आप उनकी बुद्धि का ताला खोल दो ना। बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने की चाबी तो मैंने आपको भी दे रखी, आप चाबी लगाना सीखो, आप चाबी लगाओ। बाप ने कौन सी चीज आपको नहीं सौंपी? और फिर उनके संग में तो आप रहते हो, देखते तो वो आपको हैं, आपको देखकर के ही तो वो मोटिवेट होंगे। तो बाप को बार बार मत बोलो, आप अपने जीवन को इतना आदर्श बनाओ कि आपको देख करके वो प्रेरित हो और फिर वो आपकी बातें सुने भी और फॉलो भी करें। कई बच्चे बाबा की ही बात बाबा को वापस सुनाते हैं, बाबा आप कहते हो ना माया आएगी, वो तो अंत तक आएगी, तो हम अंत में निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे बहुत काल का अभ्यास, अंत में निर्विघ्न बनेंगे तो राज्य भी अंत में थोड़ा सा ही पाएंगे। और आपने देखा होगा कई बच्चे कहते हैं हम अंत में पढ़ लेंगे, अंत में पढ़ लेंगे। मार्च आ जाती है, अप्रैल आ जाती है, पेपर के दिन आ जाते हैं, फिर किताब उठाते हैं, किताब में से एक बार पढ़ा लेकिन पढ़ते ही वो फिसल जाता है, याद होता नहीं। पेपर हॉल तक जाते जाते तो बिल्कुल स्लेट कोरी हो जाती है, वहां प्रश्न पत्र देखते हैं तो कुछ उत्तर ही नहीं सूझता। और जिन बच्चों ने शुरू से पढ़ाई की होती है, पहले तिमाही पेपर में लिखा, फिर छमाही पेपर में लिखा, फिर नौमाही पेपर में लिखा, तो फाइनल पेपर में वो तुरंत लिखा जाता और वो बच्चे पास विद ऑनर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शुरू से अर्थात बहुत काल से जिन्होंने निर्विघ्न बनने का अभ्यास किया होगा, मायाजीत बनने का अभ्यास किया होगा, तो ऐसे बच्चे बहुत काल राज्य भाग्य के अधिकारी भी बनेंगे। कई बच्चे विनाश की घड़ियों की गिनती करते हैं, आसार तो दिख रही हैं, लग तो रहा है, कितने साल बचे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे समय की गिनती मत करो, बाप के गुणों की गिनती करो, बाप समान क्वालिफिकेशन की गिनती करो, मैं बाप समान कितना बन गया, अभी बाप समान बनने में मुझे और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन धारण करनी है। समय कॉन्शियस बनोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन बाप के गुणों के कॉन्शियस बनोगे तो नंबर मिलेंगे। और आप बच्चे समय के रचयिता हो, समय को लाने वाले हो, तो अगर रचयिता ही अपनी रचना का इंतजार करेगा तो उसे रचयिता कौन कहेगा। इसलिए समय का इंतजार मत करो, लेकिन समय को क्रिएट करो, अर्थात इतनी पावरफुल तपस्या करो, इतनी एक रस स्थिति बनाओ और इतने पावरफुल संकल्प और पावरफुल वाइब्रेशन फैलाओ कि वो जो अंतिम समय है सबके मुक्ति और जीवन मुक्ति का, वो साकार हो जाए। जो आत्माओं की चाहना है कि हमें मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले, वो उनको मिल जाए। उस समय को लाने वाले आप समय के रचयिता, रचयिता बाप के आप मास्टर रचयिता, तो अपनी रचयिता की सीट पर बैठो और ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाओ। ओम शांति।
जीवन सभी के संवरने लगेंगे देते चले
देते चले
देते चले